ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردن ابدا. صلوات علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آخری حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت پیدا ہوگی جو ابد تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. یہ ایام عزا کا موسم ختم ہو رہا ہے، عزا نہیں ختم ہو رہی، ظاہر ہے ہمارے دلوں میں جو غم ہے وہ تازہ ہے. 1400 سال سے اس کی اس غم کی آبیاری اپنے آنسوؤں کے ذریعے کی جا رہی ہے نسل در نسل. تو ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو بھول جائیں پھر ایک سال بعد دوبارہ یاد کریں، بلکہ یہ روز آنا جو کہتے ہیں کہ میرے سینے اندر قبر حسین ہے، میرا قیدا ہر ساں کربلا ہے، کہ قبر واقعی یہ روایت میں ہے کہ امام حسین کی جو ورچوئل قبر ہے وہ مومن کے دل کے اندر ہے، اور ہر سانس سے یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے. صلوات پڑھے بابا.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اب تھوڑی سی اور، یعنی جو ایام باقی رہ گئے ہیں، منیر بھائی نے کوشش کی کہ جلدی میں ایک مجلس ارینج کر لی، خدا نے توفیق دی، یہاں سب لوگ آ گئے الحمدللہ. آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں مطالب کو، تو میں نے بہت جلدی میں ایک مضمون تیار کیا ہے. اس کا ایک حصہ 2-3 سال پہلے پیش کیا تھا، تو اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ موضوع ہے انفرادیت کے بجائے انفرادیت کے بعد اب اجتماعیت کی طرف جانے کی. ویسے بھی یہ جو مجالس ہوتی ہیں ایام عزا کے آخر میں، ان کا موضوع یہی ہونا چاہیے کہ جیسے کہ آپ ایک کیمپ میں آئے تھے، آپ ایک ریفریشر کورس میں آئے تھے، اور آپ نے یہ تعلیم اور تربیت حاصل کی مہینہ دو مہینے جو اتنی توفیق ہوئی لوگوں کو. سو واٹس نیکسٹ، اب اس کا کیا کریں؟ یہ اس کا کوئی پریکٹیکل آگے امپلیمنٹیشن ہے، یا بس اس کو یاد کریں اور پھر دوبارہ سے پھر یاد کریں؟ یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، تو یہ درسگاہ سے جو بچے نکل رہے ہیں ان کی پھر سوسائٹی میں کوئی اس کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ یا درسگاہ کا مطلب یہ کہ ایک ہی کلاس پڑھائی جاتی ہے جو پہلی ہے، اور پہلی ہی کلاس ہر سال پڑھائی جائے؟ نہیں، بلکہ اس میں مختلف کلاسیں ہیں، اپنے اپنے انداز سے انسان خود طے کرے گا کہ اب اس کی کون سی کلاس ہے. تو یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے کی کہ اب آپ لوگوں نے اتنا سنا ہے تو اب واپس کتابوں کی طرف جائیں، کچھ پڑھنا بھی شروع کریں، کیونکہ اس کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے. ये कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि पूरा दीन वो सुनने से हासिल कर लेगा, ये इम्पॉसिबल बात है बिल्कुल। इस धोखे से बाहर निकल आए, आपको खुद जरूर कुछ ना कुछ खोलना पड़ेगा, और सबसे पहली जो किताब खोलनी होगी उसका नाम है कुरान मजीद, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले
मोहम्मद।
यानी एक मोमिन के लिए जरूरी है कि कुरान शरीफ, नहजुल बलागा, सहीफ़े सज्जादिया, मफातिर जनान जो आमाली किताब है, और अपने मर्जे की तौजी, ये किताबें उसके हर वक्त एक्सेस में होनी, इसका ओढ़ना बिछोना ये किताबें हो। उसके बाद बहुत सारी किताबों की आपको खुद तलब पैदा हो जाएगी, लेकिन ये जहाँ से शुरू करें, जब हम सर्वे करते हैं तो जैसे इस सवाल का जवाब बड़ी मुश्किल से मिलता है कि इमाम हुसैन करबला क्यों गए थे, 10-15 जवाब मिलते हैं अलग अलग। इसी तरह अगर आप 10-12-15 मोमिनीन को अपने पास कहीं बुलाएं खाने पे, और उनसे ये सवाल पर्ची पे लिख के करें कि आपने पूरा कुरान शुरू से आखिर तक एक दफ़ा ज़िंदगी में अपनी ज़ुबान में पढ़ लिया, तो आप ख़ुद उसका रिज़ल्ट आपको अंदाज़ा होगा कि क्या जवाब मिलेगा। या मसलन जितना मौला अली पे जान निसार करते हैं, जितना उनका नाम लेते हैं, तो अगर एक किताब उनकी हमारे हाथ लग गई है नजर बलागा, क्या हमने ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा शुरू से आखिर तक, यानी एक ख़त भी होता है अगर ना किसी महबूब का, ख़त ही समझ लें, ख़त को भी लोग जो है रख लेते हैं सिराने, फिर निकालते हैं, फिर चूमते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद फिर याद आता है महबूब का ख़त है, कुछ तो इसमें ऐसी बात होगी ना, कुछ तो समझें इन चीज़ों को, कुरान को, नहजे बलागा को, सहीफ़े सज्जादिया को, कुछ तो अहमियत दें। कि हमारे अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि बकरा ख़त्म होने से पहले वो शौक़ ख़त्म हो जाता है, तो यह एक अलग मसला है, तो थोड़ी कंसिस्टेंसी इसमें दिखानी पड़ेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आपकी मैं पूरी तवज्जो चाहता हूँ, मौजू खोलने जा रहा हूँ कि इस्लाम में इनफरादी मामलात बिल्कुल एक समझने के एक फाउंडेशन है, यानी एक फाउंडेशन है कुछ और करने के लिए। यानी मतलब नहीं था कि इनफरादी मामलात हों सिर्फ, यानी मैं अच्छा इंसान बन जाऊं, या मैं अपनी नमाज पढ़ लूं वक्त पे, मैं अपनी घर के मामला संभाल लूं, सिर्फ ये मतलब नहीं था इस्लाम का। जो हम जो आजकल हम अच्छे मुसलमान की तारीफ भी यही होती है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने माशाल्लाह अपने वाजिबात भी पूरे कर लिए, और किसी के लेने देने में नहीं है, बहुत नेक आदमी है, ना ये किसी को बुरे को बुरा कहते हैं, ना अच्छे को अच्छा, अपने काम से काम रखते हैं, बहुत अच्छे। ये डेफिनेशन इस्लाम में अच्छे आदमी की बिल्कुल भी नहीं है। इंडिविजुअलिज्म नहीं है इस्लाम के अंदर। यानी मैं आपको 4-5 मिसालें देके वाजे करूं। पहली मिसाल ये है नमाज की ले लें। मैं हर इबादत में आप देख सकते हैं कि कितनी इज्तिमाईयत है। नमाज से शुरू करें। मैं नमाज घर में अकेला पढ़ रहा हूँ, कोई नहीं है मेरे पास, पढ़ना क्या है मुझे उसके अंदर, इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। तर्जुमा क्या होता है इसका, कौन हम, ना नून का मतलब हम, अगर अलिफ होता तो मैं, अगर लिखा होता इया का आबुदू तो मतलब होता मैं तेरी इबादत करता हूँ, इया का नाबुदू का मतलब हम कायम है, तो कमर में अकेला खड़ा हुआ, महसूस कर रहे हैं इस बात को, क्या तालीम देना चाह रहा है खुदा। वह इया का नस्ताइन, अगर अस्ताइन होता तो मैं तुझसे मदद मांगता हूं, इया का हम सब तुझसे, हम कायम है तो अकेला नमाज पढ़ लो। यदि वहीं से रोक दिया कि ये सोचना भी नहीं कि तुम अकेले हो नमाज में, ये कितनी दफा पढ़ते हैं हम दिन में, 17 रकत नमाज है ना, उसमें से जो पहली 2 रकत होती है हर नमाज में, उसमें सूरह हम्द पढ़नी वाजिब है, और उसमें ये इतनी दफा ये पढ़वाया जाता है। ये तो हो गई इंडिविजुअल नमाज। अच्छा, इंडिविजुअल नमाज जो होती है उसके उसका टाइम मखसूस है, 3 टाइम कुरान ने बताए 5 नमाजों के, उसमें वो पढ़ी जाती है। उसके बाद नमाज जमात आ गई। नमाज जमात इसका अगला लेवल है, ऐसी नमाज का, सिर्फ नमाज को ही हम खोल रहे हैं। तो अब कहा कि इसमें अगर इतने आदमी हो तो इतना सवाब, और इतने, सुनिए आपने सब रिवायतें, एक रिवायत कहती है कि अगर 10 से बढ़ जाएं तो इसका सवाब किसी को नहीं पता, इतना क्यों? अब क्या हो गया, अब तो मैं पढ़ भी नहीं रहा मैं तो सिर्फ सुन रहा हूं, अब तो मैं तिलावत भी नहीं कर रहा, लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे दाएं बाएं जो लोग आ गए, इसकी बरकत से ये जमात बन गई, और जमात जब बन गई तो अब इसका सवाब, सवाब जाहिर है रगबत के लिए, इस पे कई दफा हम बात कर चुके हैं कि सवाब मकसद नहीं है, मकसद कुछ और है, लेकिन सवाब रगबत के लिए, जैसे इमाम हुसैन अलैहि सलाम की ज़ियारत से भी सब लोग आए सलवात पढ़े इंतजार की कबूलियत के
लिए।
तो जब कहा जाता है कि हज के बराबर या उससे ज्यादा या 70 हज या मकबूल हज, जो भी आप रिवायत ले रहे हैं, इतना सवाब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने का, तो इसका मतलब नहीं कि हज नहीं करेगा, नहीं ये मतलब नहीं, बल्कि ये रगबत के लिए कि अगर किसी को बताना हो कि कितनी क्वांटिटी, कितना उसको अजर मिलेगा, तो क्या ये सवाब के लिए जाते हैं वहां पर? नहीं, मकसद कुछ और है वहां जाने का, सवाब लाजमन मिलेगा, इसी तरह इस मजलिस में आने का मकसद कुछ और है। अब जमात में क्यों आए, जरा गौर कीजिएगा अपने बारे में, हमारी जो जमातें जिस तरह से हो रही हैं उसके बारे में गौर कीजिएगा, कि जो हम 10-10 साल नमाज पढ़ते हैं जमात से, और फिर उसके बाद पूछते हैं कि वो जो कोने में एक साहब आते थे चश्मा लगाते थे, हरी रंग की टोपी काली रंग की क्या पहनते थे वो, यानी नाम तक किसी को, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। अभी ये तजुर्बात मुझे हाल ही में हुए हैं कि कितने लोगों की जब इंतकाल होता है तो लोग कहते हैं हम नहीं जानते, क्योंकि नाम से कोई जानते ही नहीं है, फिर मैं उनको दिखाता हूँ कि नहीं आप जानते हैं, आप तो अक्सर मिलते थे, हर हफ्ते मिलते थे, अच्छा तस्वीर दिखाएं, जब तस्वीर, अरे ये तो हमारे ऐसे ही है ना। तो ये मकसद नहीं था इन जमातों का कि किसी को किसी का नाम भी नहीं पता, नाम नहीं सब पता होना चाहिए, हालात भी पता होने चाहिए, सिर्फ नाम नहीं। जैसे मैं उस दिन भी अर्ज कर रहा था कि जब ये कहा गया कि कुछ चीजों की तरफ देखो तो सवाब है, तो वो मकसद सवाब नहीं है, यानी कौन सी चीजें जिनकी तरफ देखना, बच्चों के लिए रिपीट कर रहा हूं, कहां कहां देखना सवाब है, सिर्फ देखना, सबसे पहले काबे को देखना सवाब है, खाली आप बैठ के देखते रहें सवाब मिलेगा, दूसरा कुरान मजीद को, अगर आप नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, उसको देखें खाली आयतों को, देखने का भी सवाब है, तीसरा वालदेन पेरेंट्स की चेहरे को देखना। अब यहां पर ये नहीं है कि आप पूरा दिन उनको यूं देखते रहे, बल्कि देखने का मतलब है कि जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको क्या जरूरत है, इनके माली हालात कैसे हैं, इनको खाने को जरूरत है, पीने की जरूरत है, पहनने की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, जब आप देखेंगे ही नहीं तो मकसद कुछ और है, सवाब कुछ और है। इसी तरह एक और चीज देखना इबादत है, इमाम अली अलैहि सलाम का चेहरा, सलवात पढ़े
मोहम्मद,
ये जो मुस्तहिब नमाज है, इंडिविजुअल नमाज है, मुस्तहिब नमाज किसी वक्त भी हो सकती है, 5 नमाजें वाजिब हैं जो वक्त के हिसाब से होती हैं, 3 औकात में, इसके बाद आप जमात की उसमें चले गए तो ये दायरा आपका फैल गया, ये हो, लेकिन जमात की नमाजें 5 नमाजें होती हैं जो वाजिबात हैं, मुस्तहिब नहीं होती। इसके बाद अब इसी नमाज को और खोले कि इज्तिमाईयत से क्या है, इसके बाद जो अगला लेवल है वो जुम्मे की नमाज है, तो ये दिन में 5 दफा आप जुड़ गए लोगों से, अगला जो प्रोग्राम दिया इस्लाम ने कि अब आप हफ्ते में 1 दफा इनसे नहीं जुड़ना मोहल्ले वालों से, बल्कि आप अपने मोहल्ले से बाहर वालों से जुड़ना है, इसलिए एक फासला रखा कि आप एक मोहल्ला नहीं, समझ रहे हैं, पहले आप इंडिविजुअल नमाज पढ़ते हैं, फिर कुछ लोगों के साथ पढ़ते हैं वो आपके मोहल्ले वाले हो जाते हैं, और फिर कहा कि आप जुम्मे के दिन कम से कम हफ्ते में 1 दफा तो रोज की तरह नहीं पढ़ो, अब 4, 5, 6 मोहल्ले जमाओ ताकि अब इनको एक दूसरे की खैरियत पता लगे, इनको एक दूसरे की सोशल प्रॉब्लम्स का पता लगे, ये इंटरेक्शन करें एक दूसरे के साथ। अगर हम इस्लाम के नाम पे कोई सेंटर बनाए और कहें यहां बात करना मना है, ये बिल्कुल गैर इस्लामी है, इसका मतलब है ये काम वहां बुलाया इस काम के लिए गया था, वरना नमाज तो जितनी तवज्जो से आप अकेले में पढ़ेंगे, उसमें रियाकारी शायद नहीं होगी। पब्लिक में तो मैं यूं करके ऐसे खड़ा होऊंगा, कंधे भी झुका दूंगा, ऐन गैन भी निकालूंगा, सब करता हूं पब्लिक में, मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन अकेले में ये सब तो रियाकारी अकेले में नहीं करता, तो ज्यादा चांस है कबूल होने का। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, यहां आ जाओ, तुम्हारे भाई के सत्ते में तुम्हारी कबूल कर लूंगा। यही कहा ना कि जमात में अगर एक आदमी की कबूल हो गई तो सबकी हो जाएगी। अब कहा निकलो, अपने घरों को छोड़ो, अपने मोहल्ले को, पहले कहा घरों को छोड़ो मस्जिद में आ जाओ, फिर कहा मस्जिदों को छोड़ो, अब एक जामे मस्जिद में आ जाओ। तो ये अब इज्तिमाइयत को इस्लाम और आगे ले गया। अब कहा अब तुम्हें उनके हालात पता होने चाहिए, ऐसा ना हो कि वो 3 मील दूर रहते तो तुमको भी वहां मिलते ही नहीं हो जाते उनसे कि उनके क्या हाल है। फिर कहा ये करो हर वीक, और फिर साल आ गया, अब क्या करें, ईद की नमाज। ईद की नमाज के लिए क्या कहा इस्लाम ने, एक शहर में कितनी ईद की नमाज होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। किसने कहा, सलवात पढ़ जिसने कहा उसके लिए। इस्लाम का प्रोग्राम बता रहा हूं, अपना नहीं, इस्लाम ने ये बताया था। उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने पहले जमाने में, अगर किसी को याद भी हो तो ईदगाह कहते थे एक जगह को, वो पूरे शहर में एक ईदगाह बनती थी बहुत बड़े मैदान में। अब क्या प्रोग्राम है कि अब आप पूरे शहर से मिले, ऐसा नहीं कि आप ईद मना रहे हो आपको पता ही नहीं हो कि शहर में बाकी लोगों का क्या हाल है। और वो उसको दो दफा, जाहिर ईद की नमाज होती है तो दो दफा आप ये काम कर सकते हैं, और भी मौके आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई मुस्तहबात में तो कोई लिमिट नहीं। आप कोई और मौका बना लें कि भाई पूरा शहर एक जगह, पूरा शहर एक जगह जमाओ, ये अल्लाह को बहुत पसंद है, इसमें शौकत है, इसमें शान है इस्लाम की। अभी आप देखें अरबईन से जो लोग आ रहे हैं, ये कितनी शान और शौकत इस वॉक की हो गई इस वक्त, या जब हज होता था जिस तरह भर के, इस्लाम की शान और शौकत के मुजाहरे ये चीजें बनती हैं। अदर देन जो मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी, यानी इसका एक और भी एस्पेक्ट्स हैं, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो अलग हैं इज्तिमाइयत के। तो फिर कहा कि अब ये साल में एक दफा ये काम करो। फिर अब क्या हो गया कि अब हमें पता लग गया, अपने शहर के लोग भी पता लग गए, मोहल्ले वाले, अब क्या करें, अब का अब ऐसा करो कि साल में एक दफा तो हो गया, अब एक काम ये करो कि जिंदगी में एक दफा एक काम करो कि तुम पूरी दुनिया के लोगों से मिल लो, जो तुम्हें किसी को कोई नहीं बताएगा, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा कि कितने किस्म के लोग अल्लाह ने बनाए हैं, गोरे हैं, काले हैं, चपटे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, कौन कौन सी जुबान है, देखो तो सही मेरी मखलूक को देखो आके। जब ये कहा ना कि ये घर बनाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास, हम क्या कहते हैं अल्लाह का घर है, अल्लाह क्या कह रहा है आपका घर है भाई, किसके लिए बनाया, लिन्नास लोगों के लिए, आओ निशानियां देखो। कुछ निशानियां तो बता दी, मकाम इब्राहिम निशानी है, ये निशानी है, सफा मरवा, और भी मैं तो करूं मखलूक निशानी है, कोई जगह ऐसी नहीं कि आप दुनिया में कहीं चले जाए कि जहां एक जगह इतनी सारी मखलूक और इतनी सारी जुबानों में खुदा को पुकार रही है एक वक्त में। ये जलवा है तौहीद का कि सारे अपने चीजें भुला के, और ये प्रैक्टिस क्यों करवाई कि अब घर जाके भी ऐसे ही करना। अब ये नहीं कि एक ग्रुप क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक टोरंटो में 6 ग्रुप बनाना है, कराची में 50 तंजीमें बना लें, ये इसीलिए जमात की नमाज थी। एक आगे खड़ा होगा सब झुक जाएंगे, जुम्मे की नमाज में पूरा मोहल्ले झुक जाएंगे, ईद की नमाज में पूरा शहर झुक जाएगा, और हज के दौरान पूरी दुनिया एक रास्ते पे चलेगी। ये सिर्फ प्रोग्राम बता रहा हूं कि ये इस तरह से प्रोग्राम लॉन्च किया गया था हमारे लिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि इस्लाम हमें इंडिविजुअलिज्म से निकालकर, जिसमें हम बहुत आसान है अपने घर में नमाज शब पढ़ना, हमारी सारी मुश्किलात इज्तिमाई कामों में, जो गदीर की मुश्किल है हमारी, गदीर एक मुश्किल बन गई ना, अब उसको हम मानते ही नहीं है, अब कहते हैं हमारी ठोकर पे हुकूमत, हमारी ठोकर पे, अगर आपकी ठोकर पे तो फिर ये झगड़ा किस चीज का था। हजरत अली अलैहिस्सलाम की क्या चीज, सलवात पढ़े बाबू को, इस पे गौर करते रहा करें कि जिन खुलफा को हम नहीं मानते उन्होंने क्या चीज इमाम अली से ली थी, उनका तकवा लिया था, उनका इल्म लिया था, उनकी शुजात ली थी, उनकी अदालत ली थी, उनकी करामत ली थी, उनकी इमामत, क्या वो छीन सकते थे कोई एक भी चीज इसमें से? वो जरूरी क्यों थी और इतनी जरूरी काम था कि रसूल अल्लाह को किस तरह से वार्निंग दी गई कुरान में कि अगर ये ना पहुंचाया तो? यही था इज्तिमाई नज्म। पता था कि इज्तिमाई नज्म जब जहां से कायम होगा वो नहीं होगा तो फिर ये क्या इसका अशर, जो आपने खुद देख लिया करबला तक बात पहुंच गई 50-60 साल में, कहां से कहां बात पहुंच गई। आप देखें इंपॉर्टेंस कितनी है लोगों की, इज्तिमाईयत की। कुरान को एक सरसरी नजर से अगर आप देखें, रसूल क्यों भेजे हैं? व अरसलना का लिन्ना से रसूला, हमने लोगों के लिए रसूल भेजे जो दीन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ना कि डब्बा कोई कोना में बनाओ, कोई तामीर कर लो, बस उसके अंदर जो मर्जी करो, फिर घर चले जाओ, हमारे कोई ताल्लुक सोसाइटी से नहीं। इसका कोई ताल्लुक कुरान से नहीं है, ऐसे सेंटरों का जिसका ताल्लुक लोगों से नहीं हो। रसूल क्यों भेजे गए? वमा अरसलनाके लिन्नासे रसूला, रसूल भेजे गए लोगों के लिए। कुरान किसके लिए भेजा गया? शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये किसकी हिदायत करेगा, कैसे करेगा? वो खुद जाएगा चल के कुरान लोगों के पास या हम लेके जाएंगे? क्या ख्याल है आपका? हमारे ले जाने के अलावा कोई और तरीका है? तो हमें अभी जिन 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 जिसको भी यार 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए, अब ये इसलिए मजलिस है आखिरी आखिरी अय्याम में ना कि अब हम बाहर आ जाए जरा फील में ना, अब बताएं कि कुरान हम कहाँ ले गए लोगों तक। अल्लाह ने तो ऐलान किया था कि लोगों के लिए भेजा, तुम्हारे घर के लिए नहीं भेजा, कि सिर्फ घर के लिए नहीं भेजा, मैं कह रहा हूँ घर के लिए भी भेजा है, यानी महदूद मत करें कि अपने घर में रखा है अलमारी में और आप सुबह उठ के मैं तो अल्लाह का शुक्र है मैं आधे घंटे तलावत कर लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आया था लोगों में ले जाने के लिए, इसका पैगाम आम करें। रसूल लोगों के लिए भेजे, कुरान लोगों के लिए भेजा, इमाम किसके लिए भेजे? वाइजब तिला इब्राहिम रब्बहु बिकलमातिन फातम्महुन्न काल इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, इमाम किसके लिए बनता है? लोगों के लिए। हमारे इमाम तो हमारे हैं बस, हम तो टीवी पे ही बैठ के हमारे उलमा कह रहे होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ इमाम, हमारे यहाँ नहीं होते इमाम, इस्लाम के इमाम है ये हमारे प्राइवेटाइज क्यों कर लिया इसको, फ्रेंचाइज क्यों कर लिया इमाम हुसैन मजलिसों को? ये लोगों के इमाम हैं, ये पूरी दुनिया को हिदायत देने आए हैं। ये जब मौला अली का ऐलान किया था गदीर के दिन, मनकुन तो मौला फहाजा अली मौला, तो ये ऐलान लोगों के लिए था या शियों के लिए था सिर्फ? अगर सिर्फ शियों के लिए था तो आपको फिर तो शिकायत क्या है किसी और से? और अगर सबके लिए था तो सबके पास लेके क्यों नहीं जाते इसको, फ्रेंचाइज क्यों किया हुआ है? इस मजलिस में क्यों नहीं बैठे लोग पड़ोस के हमारे, हमारी मजलिसों में क्यों नहीं आते लोग बराबर वाले? हम कहां पहुंचा रहे हैं इस पैगाम को? इमाम भी लोगों के लिए आया, खाने काबा बनाया, इन अव्वल बैत वुदिया लिन्नास, मैं पहले ही कह चुका हूं। अब इसके फिकी मसाइल अलग हैं कि वहां कौन जा सकता है कौन नहीं, ये एक अलग बहस है, उसकी वजूहात अलग है। लेकिन ये घर जो बनाया गया है, ये खुदा ने कुरान में लिखा है इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदा लिल आलमीन, ये पूरे आलमीन के लिए मुबारक है, बरकत है और हिदायत है। कहां पर? इस घर में, वो भी उसके लिए। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा, ये उम्मत, ये हम, ये हमारा इज्तिमा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आपको एक उम्मत बना के अल्लाह ने यहां भेजा, किसके लिए? लोगों के लिए। देखा आपने कितने लिन्नास, हर चीज लिन्नास है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रसूल लिन्नास, कुरान लिन्नास, इमाम लिन्नास, काबा लिन्नास, और अब हम सब भी, यानी सबका एक ही काम बताया कुरान ने। वो जो हम अपनी आम जुबान में कहते हैं कि पूरी दुनिया आपकी कस्टमर है, अगर आप इंडिविजुअलिज्म पे रहेंगे तो आप अपनी नमाज पढ़ें, अपना मातम करें, अपनी मजलिस करें, आपके मुझे क्या पता, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो इसी काम के पैदा किए गए हूं, ये भी एक एक जाविया है देखने का, एक जाविया ये करें ठीक है मुझे पता लग गया मेरे घर वाले अब मैं इस पैगाम को अगर हजरत जैनब की मजलिसों से जोड़ना चाहेंगे अपनी मजलिसों को तो आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और नहीं जोड़ना चाहेंगे तो आप कहेंगे सिर्फ पुरसे की मजलिस है, वी डोंट केयर अबाउट द पीपल, हम किसी एक कोने में बैठ के रो लेंगे, किसी एक कोने में कोई फंक्शन कर लेंगे किसी एक हॉल में, ये दोनों राइज हैं इस वक्त, आप खुद फैसला कीजिए, मैं सिर्फ दावत फिक्र दे रहा हूं कि कौन सी फिक्र बेहतर है, इसको महदूद करें या इसको आम करें, हजरत जैनब की मजलिस कौन सी वाली थी, उन्होंने इसको महदूद किया था या इसको आम किया था, सलवार पढ़े मोहम्मद वाले बाद अब मैं आयतुल्ला। अच्छा एक बात और जो हमारे यहाँ गलत फहमी है कि जैसे ही कोई नाम लेता है कबीलों का या नेशंस का इसका तो लोग समझते हैं रेसिज्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आयत है कुरान में ये भी नास से मुताल्लिक है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उन्सा, ए लोगो हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, यानी कोई और तरीका किसी और तरह से इस दुनिया में आने का नहीं है, जो एक्सेप्शन है वो अलग है, कभी कोई कहीं हजरत आदम भी हजरत ईसा भी आए कोई और साहब आए, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, खुदा एक जनरल रूल बता रहा है आपको कि जो भी आया है वो एक माँ और एक बाप से पैदा हुआ है, ये तरीका इस दुनिया में लोगों के आने का, लेकिन अल्लाह साथ में कह रहा है जअलनाकुम शुउबन व कबाइला लितआरफू, लेकिन हमने आपको मुख्तलिफ कौमों में और मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम किया है, तो कौम और कबीला होना कोई बुरी बात ये तो बाई नेचर है, जो बुरी बात है वो ये कि कोई एक अपने आप को एक कबीले में या कौम से होने की वजह से दूसरे पे फौकियत समझे, वो मना किया है, उसके लिए कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अभी हम लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि इसको भी एक्सेप्ट करें कि शऊब और कबाइल खुदा की खिलकत है और इसके साथ मिल के रहना। अभी हम जैसे सब उर्दू स्पीकिंग या बैठे हुए क्यों बैठे हुए हैं, कोई अरबी क्यों नहीं बैठ सकता, या अरबी सारे एक साथ क्यों बैठे होते हैं, ईरानी सारे एक साथ, ये नेचुरल है। कुरान में ये आयतुल्ला मुताहिरी ने ये बताया कि इसको बिल्कुल चैलेंज नहीं करें, ये बिल्कुल नेचुरल है, यानी हर आदमी जिस जगह पे रहता है उससे मोहब्बत होती है। रसूल अकरम रोए थे जब मक्का छोड़ना पड़ा था, इमाम हुसैन रोए थे जब मदीना छोड़ना पड़ा था, इसमें कोई गैर इस्लामी बात नहीं है अपनी जगह से मोहब्बत करना, आपकी जो कल्चर कहते हैं जिसमें लिबास है गिजा है लोग हैं, जब जो भी जगह इंसान पैदा होगा ग्रो अप होगा वो उसके अंदर उससे मोहब्बत एक नेचुरल सी चीज़ है, इस्लाम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इन्हीं सब रस्मों रवाज को अगर इस्लामी रंग में किया जाए तो हम दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक इज्तिमाई मसाइल हमारे शामिल है, या तो हम जाते हैं इस्लाम की तरफ तो आप कल्चर को पूरा निगेट कर देते हैं, या कल्चर में इतना आगे जाते हैं कि इस्लाम को फिर निगेट, तो एक काम जो अब शादियां भी होने वाली हैं कि इसको बैलेंस करें, अपने कल्चर को प्रमोट करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी हदें हैं, वो शरीयत बताएगी कि उसकी हदें कहाँ है, अपने हाथ से नहीं बनानी शरीयत, कि अपनी मर्जी का पहले एक तय कर लिया फिर छह मर्जी से पूछा जिसने कहा ओके वक्का मैं उसकी तकलीफ में हूँ, ये भी हम सब करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो एक ये बात हो गई। अच्छा उम्मतें जो हैं इसके अंदर खुद ये जब कह दिया कि आपको इसमें तकसीम किया, उसके बाद खुदा ने यही बताया कि वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माए बशरा, हमने पानी से बनाया आपको बशर, फजालाहू नसबा, और फिर तुम्हारे अंदर ये खानदान रखे, नसब हसब नसब जब कहते हैं ये कुरान कह रहा है, यानी ऐसा नहीं कि खानदान का किसी को उन्होंने कोई बुरी बात है, लेकिन अफजल समझना यहाँ पे मसला है, लेकिन हर कोई की एक आइडेंटिफिकेशन है, कोई इस खानदान से कोई उस खानदान से, वह सेहरा खानदान भी बनाए और फिर शादियां भी की, यानी आप अकेले जिंदगी गुजारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर जिन्स की दो जिन्स बनाई, हर जिन्स में यानी हर जो कहते हैं मखलूक में दो दो यानी जोड़े बनाए खुदा ने, ये भी अपनी आयतों में से एक कुरान का एक जगह लिखा हुआ है कि ये मेरी निशानियों में से है कि हर चीज के अपने, ताकि ये अज़दवाज हो और फिर ये नस्ल आपकी آگے بڑھے. یہیں سے اجتماعیت شروع ہو جاتی ہے کہ آپ رہ ہی نہیں سکتے جب تک آپ مذکر اور مؤنث کو نہیں ملائیں اور خاندان نہیں بنائیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
اب یہاں پہ ایک ذرا سا انالیسس ہے, پھر ہم بات کو سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی یا معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں نکلنا ہے, کام کرنا ہے. تو یہ کتاب کا نام ہے سوسائٹی اینڈ ہسٹری آیت اللہ متحری کی. وہ فرماتے ہیں اس میں تین چار ویوز ہیں کہ سوسائٹی کہتے کیسے ہیں, اس میں اختلاف ہے لوگوں کے اندر. اور انہوں نے بہت سارے باہر کے بھی رائٹرز کو کوٹ کیا, اس کو آپ پڑھ لیجیے گا تفصیل سے, صرف ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ معاشرہ کچھ بھی نہیں ہوتا, جو ہے سب افراد ہیں. افراد ہیں تو ہیں, افراد نہیں ہیں تو نہیں ہیں, کیونکہ آپ افراد کو ملا کے کوئی کمپاؤنڈ نہیں بنا سکتے. یعنی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیں تو پانی بن جائے. یہ افراد ایسے نہیں ہیں. افراد جو بنائیں یہ آئیڈینٹی کے ساتھ بنائے ہیں, یہ ایسے ہی رہتے ہیں. اور معاشرہ اس میں انہی سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرہ خود کوئی اینٹیٹی نہیں ہے. یہ ایک نظریہ ہے سوسائٹی کا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں, افراد تو ہیں لیکن یہ مل کے کام کرتے ہیں. یہ مل کے بھی آئیڈینٹی آپ رکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے کار کے مشین کے پرزے ہوتے ہیں, دکھتا ہے کہ کار چل رہی ہے لیکن دس ہزار دس چیزیں اس میں ہل رہی ہوتی ہیں اندر. تو بیلٹ الگ ہے, بریک الگ ہے, ٹائر الگ ہے, اپنی انڈیویجل پہچان بھی ہے ان کی, لیکن جب چل رہا ہے تو مل کے چل رہے ہیں. تو یہ سیکنڈ ڈیفینیشن ہے سوسائٹی کی, معاشرے کی, کہ معاشرہ اسے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے پاس ایک انڈیویجل رول ہے لیکن جب ایکٹ کرتا ہے ٹوگیدر مل کے تو یہ آگے بڑھتا ہے. تیسری ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ معاشرے افراد سے تو ہیں اور یہ ملتے بھی ہیں, لیکن ان کا ملنا یہ فزیکل نہیں ہے بلکہ ورچوئل ہے. یعنی یہ فزیکل پرزوں کی طرح نہیں مل کے کام کرتے, بلکہ ان کی سوچ ملتی ہے, ان کی افکار ملتی ہیں, ان کی ہسٹری ملتی ہے, ان کا تمدن ملتا ہے, ان کے مسائل ملتے ہیں, ان کی معیشت ملتی ہے. یعنی نان ٹینجیبل ساری چیزیں ان کی ملتی ہیں, اس سے سوسائٹی ترتیب پاتی ہے. یہ تیسرا ویو ہے اس کا. اور ایک چوتھا ویو بھی ہے جو بہت ہی فلسفیکل قسم کا ہے, میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا ویو ہے کہ سوسائٹی کسے کہتے ہیں, وہ تیسری ڈیفینیشن کے زیادہ قریب ہے. تیسری ڈیفینیشن جو ہے کہ ہم فزیکل ایک نہیں ہیں بلکہ ہم ورچولی ہمارے ہم و غم ایک ہیں, ہماری فکریں مشترکہ ہیں, ہمارا اثاثہ مشترکہ ہے, ہمارے پاس جو اوپر سے تاریخ آ رہی ہے پیچھے سے, یہ پوری انسانیت کی میراث ہے نا. یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ کامن ہسٹری, کامن ڈیسٹینی بھی کہا ہے. یعنی ایک تو ہسٹری بھی ہماری کامن ہے انسانیت کی, اور قرآن نے کہا ہے کہ تم سب کی ڈیسٹینی بھی ایک ہے. وہ کیا ہے جو ہمیں سب کو یاد ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کا جو نظریہ ہے سوسائٹی کا وہ یہ ہے کہ اگر ڈیسٹینی نہیں ہے تو پھر آپ امت بھی نہیں ہے. یعنی یہ گاڑی ہے جو چلے جا رہی ہے تو وہ بے معنی ہے. تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم کس گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں. یہ گاڑی کی کوئی ڈیسٹینی, کوئی ڈیسٹینیشن ہے, اس کا رخ خدا کی طرف ہے یا کس طرف ہے؟ تو اس کا ایک رخ ہونا پہلے تو صحیح یا غلط ہے بات کی بات ہے. کچھ کہتا ہے رخ کی ضرورت ہی نہیں ہے, جس کی جو مرضی چلتا. یعنی کچھ لوگ فریڈم کو اس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں آج کل کہ بھائی چھوڑ دیں اس کی مرضی جو کر رہے ہیں. تو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ کسی گاڑی میں بیٹھ جائے, کہیں تو پہنچ ہی جائے گا. کیسے کہیں پہنچے, صبح اس کو آفس جانا ہے مثلا, کسی کو ڈام چاؤن جانا ہے اور وہ بیٹھ جائے مونٹریال جانے والی گاڑی میں. تو آپ کے دوست یہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں بھائی, جانے دیں, کہیں تو پہنچے گا. آپ کہیں گے کہیں تو پہنچے گا, لیکن جانا تو اس کو جاب پہ تھا. اس طرح لوگ جب امر بالمعروف کرتے ہیں تو لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ارے آپ کیوں بول رہے ہیں ان کی, یہ انڈیویجولزم ہے. اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت حدیث بیان کی تھی جو اب ہوائی جہاز میں سمجھ میں آتی ہے. پہلے کشتی کی مثال دی تھی کہ کشتی میں جو مسافر سوار ہیں اور انہوں نے ایک ایک سیٹ اپنی لے لی کشتی میں کہ یہ میں نے کرایہ دیا اس کا, اور یہ کشتی چل پڑی. اب تھوڑی دیر بعد ایک صاحب نے یہاں ہول کرنا شروع کیا. سمجھ رہے میری بات کو؟ बच्चे समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे?
बोट।
ओके, देयर इज अ बोट राइट। इफ पीपल आर ट्रेवलिंग इन अ बोट, ओके, दे आर गेट्स टेकन देयर सीट्स राइट, एंड देन वन ऑफ देम स्टार्टेड मेकिंग अ होल वेयर एट हिज सीट राइट, एंड देन समबडी विल ऑब्जेक्ट, हे मैन व्हाट आर यू डूइंग राइट, सो द रिप्लाई वुड बी, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, इट्स माय सीट। दैट्स व्हाट हैपेंस टुडे इन अवर सोसाइटी, इन द इंडिविजुअलिज्म, व्हेन वी प्रमोट इंडिविजुअलिज्म, दिस इज व्हाट हैपेंस। You are rocking the boat, but he said that this is my seat. It's not a seat. We are together in the society. इसीलिए जब हम किसी के बच्चे के लिए दुआ कर रहे होते हैं ना, किसी के बच्चे की दुआ नहीं करें, सबके करें। एक बच्चा बिगड़ेगा तो पूरा पांचरा बिगड़ेगा। ये बिल्कुल वायरस की तरह है जो हम अभी इसका आपने देख लिया, खुद खुदा ने दिखा दिया कि अब हम दुआ कर रहे हैं कि ये बीमारी सबसे दूर हो जाए। ऐसे ही ये दीन है कि जो बीमारियां हमारे अंदर है, वो हिंदू हो, ईसाई हो, मजहबी हो, गैर मजहबी हो, शिया हो, सुन्नी हो, सबकी एक है, सबकी एक से मसाइल है। इसको अलग अलग खानों में क्यों बांट दिया? सुन्नी वहां जा रहा है दुआ करने, शिया वहां जा रहा है दुआ करने, दुआएं तो एक ही है, अलग अलग जगह क्यों जा रहे हैं? दुआएं एक नहीं है हमारी? जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी क्या दुआ है? जोर से बताइए, पास हो जाए अच्छे नंबरों से। और पड़ोसी में कोई रहता है हिंदू, उसकी उसका बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी क्या दुआ है? ओके, वो कामयाब हो गए, पास हो गए, अगला क्या है फिर दुआ? जॉब मिल जाए, क्योंकि जॉब नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, तो वो क्या करता है फिर? जॉब मिल जाए। अब बराबर में ईसाई रहता है, उसके बच्चा ने ग्रेजुएट कर लिया, वो क्या दुआ करेगा? जॉब मिल जाए। उसके बाद जॉब मिल गई, अब क्या दुआ है? शादी हो जाए। अब रहता है कोई सिख मेरे बराबर में, वो क्या दुआ करेगा उसके बच्चे की जॉब के बाद? आप अंदाजा करें कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। वो शादी की दुआ कर, शादी की दुआ हो गई, फिर क्या दुआ होगी? शादी हो गई फिर औलाद हो जाए। आप बताएं, कोई आपके पड़ोसी कोई देखा कि जिसकी शादी हो गई औलाद नहीं हो तो दुआ नहीं करता? या वो मजहब देख के करेगा कि इमाम अली का मानने वाला दुआ करेगा? वो भाई सबकी एक दुआएं हैं। सोसाइटी में जब आप बाहर निकलेंगे आंखें खोल के अपने ककूनों से, तो आपको नजर आएगा कि पूरी सोसाइटी एक ही गम में मुब्तला है। इसलिए जो इसकी इमामत होती है, रहबरी होती है, वो एक ही जगह होती है सबकी। ये नहीं हो सकता कि एक सुन्नियों का इमाम हो, एक शियों का इमाम हो, शियों के अंदर भी चार इमाम हो, एक मंगल को ईद करेगा, एक बुध को करेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले इमाम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो पूछो गलत कौन सी है? बुध को गलत थी या मंगल को? कहें दोनों सही है। दोनों से तो भी किसी दिन पढ़ लो भाई, फिर मसला क्या है? या तो कोई गलत है, कहें गलत कोई नहीं है, आपकी मर्जी, नमाज पीर को पढ़े या नमाज मंगल को पढ़े, ठीक है। जब मर्जी तो पूरी कौम क्यों नहीं पढ़ सकती पीर को मंगल को? या तो बताओ गलत है एक नमाज, गलत कोई भी नहीं है। और इतनी गुंजाइश है इत्तेहाद के लिए तो, कि अगर सारे मुसलमान एक जगह पढ़ ले, उससे ज्यादा तो कोई चीज ही नहीं है। सारे महाराज ने इजाजत दी है कि पूरे शहर के मुसलमान एक साथ नमाज पढ़े। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कुरानिक व्यू ये है सोसाइटी का, कि सोसाइटी जो होती है उसकी तारीख भी एक है, उसकी डेस्टिनी भी एक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी एक है, उसकी सेंसिबिलिटी भी एक है, उसका कॉमन कंटेक्ट भी एक है। इसको कहा गया है उम्मा। और उम्मा को कुरान ने एक एंटिटी के तौर पे पेश किया है। आप महसूस कर रहे हैं इस बात को? जैसे एक इंसान होता है ना इंसान, ऐसे कहा है कुरान ने सोसाइटी को, यानी वो जिंदा हो सकता है, वो मुर्दा हो सकता है। सोसाइटियां भी ऐसी होती हैं, उम्मतें भी ऐसी होती हैं। मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करूं। वले कुल उम्मतिन अजल फाइजा जा अजल हम, हमने हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर किया है मौत का। आप कहेंगे तो इंसानों के लिए भी सुना था हमने, नहीं, कुरान में देखें क्या लिखा हुआ है। उम्मतें भी अल्लाह गायब कर देगा इस दुनिया से। यह मसला है सबसे बड़ा, कि अगर हमें कुरान पे पहले बिलीव हो जाए, यानी जो जितना हमने सुन लिया है मुख्तलिफ लाउड स्पीकरों से, वो सबको साइड में पार्क करके اگر قرآن کھول لیں پہلے خود اور اپنی زبان میں پڑھیں تو آپ کو حقائق سامنے آئیں گے کہ امتیں بھی اس طرح سے ایک اینٹیٹی ہے جیسے کہ انسان. وعلیکم السلام. امت کئی نظریہ قرآن میں ہے, ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتا, ایک ساعت کی تاخیر نہیں کرے گا اللہ جب ایک امت کو غائب کرے گا اس دنیا سے. ولا یستقدمون, نہ کوئی اس کو پہلے لا سکتا, بالکل جیسے ہماری موت کے لیے ہے نا. انسان کا جو وقت مقرر ہے جانے کا اس دنیا سے, اسی طرح امتوں کا بھی, ہم اس پہ نہیں رہیں گے, ہم ہمیشہ رہیں گے. یہ پوری کی پوری امتیں خدا, اگر آپ واقعی قرآن کھول کے پڑھیں, کئی دفعہ یہ کام کر چکا ہے. خدا کے لیے بہت آسان ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پوری پوری غائب کر دی بستیاں. یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ امت بنو اور وہ پھر تم زندہ امت بنو. اچھا, دوسری وارننگ جو امت کی دی, کلو امت تدعا الى کتابها. آپ کو بلایا جائے گا, تدعا یعنی دعوت دی جائے گی, جو لکھا ہوا ہے پڑھیں. یہ ہمارے لیے بھی ہے قرآن میں, ہر انسان سے کہا جائے گا کہ اب آپ اپنے نام اعمال, بڑی خوبصورت ایک آیت ہے قرآن میں کہ تختیاں الٹی کر کے گلے میں لٹکائی جائیں گی. ہم بچپن میں سوچتے الٹی کر کے کیا مطلب, بعد میں سمجھ میں آیا کہ الٹی مطلب یوں, تاکہ ایسے کر کے پڑھیں. یوں لٹکی ہوگی تو آپ کو کیا نظر آئے گا, الٹی تختی لٹکی ہوئی ہے گلے میں, سمجھ رہے میری بات. یہ آیت ہے قرآن میں, الٹی تختیاں گلے میں لٹکی ہوں گی تاکہ انسان, کیونکہ وہ کسی اور کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے, وہ یوں کر کے پڑھنی ہوں گی. پڑھو, کیا کیا تم نے. ایک جگہ ہے کہ فمیا مسقال حضرت خیر یرا, اب تو واٹس ایپ پہ ویڈیو ہے, اب تو آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. کیا ذرہ برابر بھی خیر کیا تو انسان دیکھے گا, یرا دیکھے گا, ہم دکھائیں گے. ذرہ برابر بھی شر کیا تو دیکھے گا, ذرہ برابر خیر کیا تو, یعنی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. انسان کے لیے, امت کے لیے بھی کہا, امت کی بھی کتاب تیار ہو رہی ہے. امت بھی بچ کے کہیں جانے والی نہیں ہے. وقت نکل رہا ہے, میں اس کو مختصر کر رہا ہوں, اور اس پہ پھر امام علی علیہ السلام کے بھی اقوال ہیں. ایک یہ ہے کہ امت جمع ہوتی ہے رضا اور سخط پر, جہاں پہ مشکلات ہیں اس کو رضا میں تبدیل کریں. لوگ ایگری ہوتے ہیں اپروول اور ڈس اپروول پر. اگر آپ سب کو ڈس اپروو کریں گے, کوئی آپ کے ساتھ جمع ہونے والا نہیں ہے. آپ کامن گراؤنڈز میں, میں بات کر رہا ہوں براڈر ہیومینٹی کی, میں بات کر رہا ہوں اپنے ککون سے نکل کے. یہ تو پورا اس کینیڈا میں رہ رہے ہیں, اس میں تلاش کرنی چاہیے ہمیں اپرچونیٹیز کے, اپروول اپرچونیٹیز کہاں کہاں ہیں. خود قرآن نے کہا, رسول اللہ سے کہا, رسول اللہ اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں, نہیں مانتے, لڑائی کر رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کو کافر قرار دو, نکال دو. کیا مشہور آئے تھے کہ سواؤن تعالی سواؤن بیننا و بینہم, رائٹ, چلو آ جاؤ. نہیں مانتے رسول کو, آ جاؤ. اللہ کو مانتے ہو, آ جاؤ. یہ کہا, خود رسول کہہ رہے ہیں. کتنا بڑا امتحان ہے کہ بھائی میں اپنی ذات کو پیچھے کر رہا ہوں. اگر تم رسول کو نہیں مانتے تو اہل کتاب سے کہا کہ خدا کو تو مانتے ہو, چلو جس کامن چیز پہ ہم ساتھ ہو جاتے ہیں. پھر آگے دیکھیں گے کیسے گاڑی چلتی ہے. اس طرح ہماری اپورچونیٹیز ہیں سوسائٹی کے اندر کہ کامن چیزوں پہ تو ساتھ ہو جائیں, جوڑیں لوگوں کو بجائے بھگانے کے. امام حسین آخری وقت تک آواز دے رہے تھے کہ اس لشکر سے ایک بھی آدمی میری طرف آ جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا ہماری کسٹمر ہے, ہمارا انتظار کر رہی ہے, کسی اور کا نہیں. ہم وہ ہیں شیعان علی علیہ السلام جس کی جیب میں نقشہ ہے جنت تک جانے کا, کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس آئمہ نہیں ہے, کسی کے پاس شفاعت کا یہ نظریہ نہیں ہے, کسی کے پاس یہ کریکٹر نہیں ہے, کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے. آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, لیکن میں کیا کر رہا ہوں, جیب سے نکال نکال کے کہتا ہوں سب کو یہ میرے پاس ہے, نہ میں خود کہیں جاؤں گا نہ تمہیں بتاؤں گا, یہ میرے پاس ہے. لیکن صلوات پڑھیں محمد وآلہ, اسی طرح یہ نقشہ آپ کے پاس ہے تو آپ امیر, آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی. اب ربیع الاول ختم ہو رہا ہے, اب ذمہ داری, اب اس نقشے کو پھیلائیں دنیا کے اندر, اس کو لے کے جائیں آگے. کیوں لے کے جائیں, دیکھیں आयतुल्लाह मुतारी ने एक और नजरिया पेश किया जिसको मैं फिर कुरान से खत्म करता हूँ बात को। आगे जो उम्मतें जाएंगी, जब ये दुनिया आगे जाएगी ना, तो उम्मतें इतनी सारी डिवाइड नहीं होंगी, रिकंसिलिएशन होना शुरू होगा इन सबके अंदर। शर को लोग पहचानने लगेंगे, शर का खात्मा होगा, खैर की तरफ लोग बढ़ने लगेंगे। दुनिया और ये ग्लोबल विलेज बन रही है, ये नेशन स्टेट कल नहीं थी, आज है, कल हो सकता है कल नहीं हो। ये जो आपको बॉर्डर्स में बांट दिया गया है, ये टेम्परेरी है सब कुछ, ये आगे जाएगा। और फिर हम जो बात करते हैं, जो मैंने शुरू में की थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का क्या छीना था इन तीन खुलफा ने, उसका नाम लें, उसका नाम हम आखिरी इमाम पे लेते हैं, बीच में सारी जगह कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक हुकूमत से नहीं है। उन्होंने छीनी थी हुकूमत, उन पे लानत करते हैं, बीच में कहते हैं इट्स ओके, अब कोई भी हुकूमत करे हमसे कोई परवाह नहीं। और फिर इमाम जमाना आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर, फिर हुकूमत आ गई। कौन सा दीन फॉलो कर रहे हैं हम, किसको धोखा दे रहे हैं? एक दफा तय करें कि हुकूमत उनका हक है या नहीं है, ये नहीं कहें कि अभी है कल नहीं है। अब सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इमाम जमाना आएंगे तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा जब आपका ताल्लुक नहीं है? तो इसका मतलब ताल्लुक है, आप डिनाइल में हैं कि ताल्लुक नहीं है, इस डिनाइल से बाहर निकलने की जरूरत है आपको। अगर यकीन, क्योंकि ये तो सब पहले तशी का मजमा है, जिनको यकीन नहीं है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं शायद कहीं भेज दें, मैं सिर्फ तीन आयतें कुरान से पढ़ता हूं। وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْآئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, और हम ये चाहते हैं, अल्लाह का इरादा है, وَنُرِيدُ, हमारे यहाँ तो मशहूर है ना इन्नमा युरीदुल्लाह से, कि अल्लाह का इरादा, अल्लाह इरादा करे तो वो हो के रहेगा, ऐसा नहीं कि इरादा किया बाद में का अच्छा चलो मूड चेंज हो गया यू टर्न कर लेते हैं, नहीं, खुदा के असर नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाह की तरह ये आए थे, वह नुरीदु अन्नमुन्ना, हमारा इरादा है, हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को जमीन में कमजोर बना दिया गया है उन पर एहसान करें और उन्हें लोगों का पेशवा और इमाम बनाएं और जमीन का वारिस करार दे। सलवात पढ़े इमाम जमाने के साथ, अल्लाह ने अपना इरादा जाहिर किया है कि ये मैं करके रहूंगा, ये सब उम्मतें एक नुक्ते पे जमा होंगी, ये ट्राइबल जो हम कर रहे हैं ये पूरी यूनिवर्स एक जगह जाएगी, ये ग्लोबल विलेज बनेगा, ग्लोबल हुकूमतें, जैसे यूएन का जो कॉन्सेप्ट आया था उसी से पढ़, वहां जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद कोई कह के ये तो इरादा है, पता नहीं, शायद किसी को शक हो, हम मुसलमानों को तो नहीं है, शायद किसी और को, कि अल्लाह ने लिख कहा है कि, तो अल्लाह ने अगली आयत क्या की, वअदल्लाहु लजीना, अब इरादा नहीं है, मैं वादा कर रहा हूं। और हमारे उस्ताद मरहूम जफादी साहब फरमाते थे कि अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो जन्नत दोजख के कैसे होंगे, वो तो बाद में आएगा रोजे हिसाब और महशर, इमाम मेहदी पहले आएंगे, सलवात पढ़े उनकी जात। अब अल्लाह ने लहजा बदल दिया, अब नुरीद नहीं का वादा, अब किसी को मेरे इरादे पे कोई डाउट हो तो अब मैं वादा कर रहा हूं, मैं अल्लाह वादा कर रहा हूं, वअदल्लाहु लजीना आमनु मिनकुम वअमिलुस सालिहात लियस्तखलफन्नहुम फिल अर्ज कमस्तखलफल लजीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम लजीर तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना। अल्लाह ने तुम में से साहिबान ईमान व अमल, साहिबान ईमान और साहिबान अमल साले से वादा किया है कि उन्हें रूए जमीन में उसी तरह अपना खलीफा बनाएगा जिस तरह पहले वालों को बनाया, और उनके लिए इस दीन को गालिब बनाएगा और इस दीन को इर्तजा करेगा यानी पसंदीदा बनाएगा, और इनके खौफ को अमन से तब्दील कर देगा, ये सिर्फ मेरी इबादत करेंगे, पूरी कायनात सिर्फ खुदा की इबादत करेगी और किसी तरह का शिर्क ना करेंगे, और उसके बाद भी कोई काफिर हो जाए तो तरक्कीत, वही लोग फासिक और बद किरदार हैं। पहले अल्लाह ने कहा मेरा इरादा है कि ये करूंगा, फिर कहा मेरा वादा है। अब कुछ लोग हों शायद जो वादे पे भी एतबार ना करें, नहीं लिख के दो, हमारे होता है ना, हमारे होता ही है, ये तो ऐसे ही कहा था पिछले बार भी, आप जरा ऐसे करें मौलाना साहब, जरा लिख के दे दें कि आप टाइम पे उतरेंगे मेंबर से मसलन। तो अब अल्लाह ने कहा अच्छा ये लो, वलकत कतबना, अब मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, ये कुरान है, ये हदीस नहीं है कि शियों ने हदीस गढ़ ली अपनी इमाम मेहदी के लिए, वलकत कतब न फिर जबूर, हम तो जबूर में लिख चुके हैं, ये कुरान में लिखा है कि हम जबूर में लिख चुके हैं, मिन बाद जिक्र, एक और जिक्र के बाद, जिसकी मतलब शायद तौरात मुराद है, इन क्या लिखा था, अन्नल अर्ज़ा यरसुहा इबादी अस्सालिहून, इस जमीन का वारिस मेरे साले बंदे बनेंगे। या तो आप कहेंगे काम हो चुका पहले, और अगर अभी तक नहीं हुआ तो ये होने वाला है। अब हमारे सामने दो रास्ते, सिर्फ इंतजार करें बगैर इसका मतलब समझे हुए, या कोई हरकत करें। जो अपने बच्चों का इंतजार करते हैं स्कूल से आते वक्त, वो कैसे करते हैं? अगर 3 बजे बच्चे को घर पहुंचना है और 4 बजे तक नहीं पहुंचे तो क्या करेंगे? फिर 5 बजे क्या करेंगे? ये जो हम गा गा के एक आयत पढ़ते हैं ना कुरान की, ये बहुत ही क्या कहते हैं सेंसिटिव आयत है, मुज़तर कौन है जो मुज़तर हुआ और अल्लाह ने नहीं सुनी? मुज़तर कहाँ हो रहा है कोई यहाँ पे? पहले मुज़तर के मायने समझे। इज़्तिराब कहाँ है? इज़्तिराब तो जब होता है बच्चा घर नहीं आता, अगर इमाम नहीं आए तो कहाँ इज़्तिराब इस कौम के अंदर? क्या परेशानी है? वो तो एक लिस्ट भेजते हैं 15 शाबान को कि मौला ये भेज दे, ये भेज दे, भेज दे, आप जाए वहीं रहे, ये लिस्ट है मेरी, चलो बिस्मिल्लाह। अरीजे में क्या लिखना चाहिए हमें? आप आ जाइए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो आ गए सारी नेमतें बरकतें रहमतें मिल जाएंगी, सब मुश्किलात दूर हो जाएंगी। सलवात पढ़ो उनके साथ, बहरहाल ये एक पूरी एक अलग लेक्चर है कि इमाम की ज़हूर का मतलब क्या है, उसकी तैयारी क्या है। आप दो इशारा समझ गए, इस्तेराब बहुत जरूरी है। सबसे पहले कुछ तो हो कि हमें इमाम को फील हो कि ये मेरे लिए तड़प रहा है, या ऐसे ही बस गागा के दुआएं पढ़ रहा है घर चले आएगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा सपोर्ट के, जमीना हमवार करेगा मेरे लिए या नहीं करेगा, या वो काम भी वही करेंगे। अभी मजलिस थी तो फर्श बिछा था, लाइटें लगी थी, माइक लगा था, कुछ तो किया था ना, या आपने ये किया था कि नहीं, जो आएगा खुद कर लेगा? इमाम को ये कह रहे होते हैं, ये काम तो इमाम करेंगे, मैं तो फर्श भी नहीं बिछाऊंगा। आम कामों में भी एक इमाम पे डाल ले होते हैं, मौला आएंगे तो ये हो जाएगा, इतना सा तो कर ले, कुछ तो शो करें, मौला मैंने 5% 10% कोशिश की और मैं मुस्तरिब हूं, ये कोशिश इसलिए की कि आप आ जाएं। इसलिए कुछ लोग जो ये काम करते हैं, जैसे इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह, जो ये काम करते हैं उसको कुरान ने कहा है कि ये आदमी नहीं है, उम्मत है। वाह वाह, एक आदमी को उम्मत कहा है कुरान ने, किसको कहा? ये भी कहा ना, कुन तो खैर उम्मत, तुम खैर उम्मत हो, ता अमरुना बिल उखजत लिन्नास, लोगों के लिए बनाए निकाले गए हो, क्यों क्या करने के लिए? ता अमरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, काम एक ही है जो इमाम जमाना करेंगे, वो ही काम शुरू कर दो। इसलिए इब्राहिम जब ये काम करते थे तो कहा इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह हनीफा, इब्राहिम अपनी जात में एक उम्मत थे, पूरी उम्मत थे इब्राहिम, क्योंकि वो कानितन लिल्लाह थे, अल्लाह पे कनात करते थे, हनीफ थे, सबसे कट के अल्लाह की तरफ जाते थे। आपको पता है अहले सुन्नत ने, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, मुझे नाम भूल गया कि मिनटन में होते हैं वो, उन्होंने एक एनालिसिस किया कि इमाम खुमैनी और मौदूदी को कंपेयर किया, 4 किस्तों में उनका मजमून, आज से कोई 10-15 साल पहले दी न्यूज पाकिस्तान में छप रहा था, पूरा चीजें उनकी एनालाइज की, फिर आखिरी किस्त में कैलकुलेट किया कि फर्क क्या था उनकी कामयाबी का और उनकी नाकामी का। उन्होंने कहा तवक्कुल अल्लाह सिर्फ। ये अहले सुन्नत जो शक्ल से लगता है शायद वहाबी उसके, लेकिन वहाबी नहीं है, मुझे पता है वैसे उन्होंने हुलिया बनाए हुए, उन्होंने ये लिखा और ये छपा पाकिस्तान में। आप कह रहे हैं आपको काफिर, क्यों कह रहे हैं काफिर लोग आपको? आप कर क्या रहे हैं? उनको क्या कह रहे हैं? तवक्कुल अल्लाह, जो इमाम खुमैनी के पास अल्लाह पे तवक्कुल था वो मौदूदी के पास, उन्होंने हर चीज पे तवक्कुल किया खुदा के अलावा, इमाम खुमैनी ने खुदा के अलावा किसी पे तवक्कुल नहीं किया, हर काम होता गया उनका। ये एनालाइज करके हिस्टोरियन है वो, उन्होंने लिखा है। इसलिए इब्राहिम उम्मत थे, बुत शिकन थे, इसलिए अब हमारे यहां भी बुत शिकन पैदा हो रहे हैं। اس طرح کے لوگ جو امت ہوتے ہیں, سب سے بڑی مثال ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کی. آپ نے بھی, آپ دیکھیں کیا آیت کیا ہے قرآن کی, جو امتیں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور امام حسین جب گھر سے نکل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حاضہ من اوسی بہل حسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخی محمد المعروف ابو حنفیہ ابن حنفیہ, یعنی اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو وصیت کر کے لکھوا رہے ہیں مدینے میں. یہ لکھوا رہے کیا کہہ رہے, یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ جاء الحق من عند الحق وان الجنۃ والنار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور, اللہ ہم سب کو قبروں سے اٹھائے گا. وانی لم اخرج, میں نہیں نکلا سوائے اس کے, میں نہیں نکلا عشرن ولا بترا ولا مفسدن ولا ظلما, میں کوئی اپنی پارٹی بنانے نہیں نکلا, میں کوئی گروہ بازی کے لیے نہیں نکلا, میں کوئی شو بازی کے لیے نہیں نکلا, میں کوئی تفریح کے لیے نہیں نکلا, میں کوئی فساد کرنے نہیں نکلا, میں کوئی ظلم ڈھانے نہیں نکلا. وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. کیا کروں گا وہاں جا کے, ان آمر بالمعروف ونہا عن المنکر, قرآن بول رہا ہے قرآن, میں یہی کام کروں گا جو قرآن کہے جنگ جائے, میں امر بالمعروف کروں گا, میں نہیں عن المنکر کروں گا. واسیرا بسیرت جدی, میں اپنے جد نانا کی سیرت پہ چلوں گا. وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام, میں اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں گا. یہ ایجنڈا لے کے چلے تھے امام حسین, اور یہی ایجنڈا ہمارا ہونا چاہیے. یہ واقعات اس وقت نہیں بچا پڑھنے کا, بہت ہی شدید مظالم کب ہوئے, کربلا کے بعد. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو کچھ کربلا میں ہوا, زینب نے جب مظالم سہے تو لوگوں نے ان کو لکھ دیا شریک قتل حسین, بالکل صحیح لکھا, لیکن کوئی یہ تو بتائے کہ اب زینب کا شریک کون ہے. جب مظالم عاشور کے دن ہوئے تو عباس بھی تھے, علی اکبر بھی تھے, قاسم بھی تھے, امام حسین بھی تھے, زہیر بھی تھے, حبیب بھی تھے, مسلم بن عسجہ بھی تھے, سعید بھی تھے, یہ سب تھے, تو حسین کی بہن شریکت الحسین بن گئی. لیکن شام غریبہ جب آئی, آپ اندازہ کریں کوئی حد ہے دشمنیوں کی. آپ نے پانی بند کیا, کھانا بند کیا, ذبح کر دیا بھوکے پیاسوں کو, خیموں میں آگ لگا دی. اب سرا بیٹھی ہے زینب, بچے جمع کر رہی ہے, نہیں, اعلان کیا ہوتا ہے, اعلان یہ ہوتا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے, اب لاشیں پا باہر کی جائے. اس طرح زینب لکے ہوئے قافلے کو لے کے نکلی, کوفے کو فتح کیا اپنے خطبوں سے, بازار کو ہلا دیا اپنے خطبوں سے, شام میں پہنچی, دربار کو ہلا دیا جناب زین العابدین نے, فاتح شام بن کے واپس ہوئی, اب قافلہ جانے کو بیٹھا ہے, رباب نہیں ملتی, اب قافلہ تیار ہو گیا, رباب کی گونج بچی ہوئی ہے, رباب کیوں رہی ہے, دیکھا قبر سکینہ سے لٹکی رو رہی ہے, اور کہتی ہے اٹھو تمہیں رہائی کی بہت امید تھی, تم بہت دعائیں کرتی تھی. اور پھر یہ قافلہ جب کربلا پہنچا, پھر وہی واقعہ پیش آیا, قبروں پہ روئے, سن اور تنوں کو سروں سے ملایا, دوبارہ تدفین کی امام سجاد نے, دو تین دن وہاں گزارے, لیکن جب چلنے کا وقت آیا تو سب کہتے ہیں اٹھو, لیکن رباب اب نہیں, کہتی میں کیا کروں, میری ایک بیٹی تھی وہ شام میں رہ گئی, میرے علی اصغر یہاں, میرا سرتاج حسین یہاں, میں مدینہ جا کے آپ کو بتائے, سب سے پہلے جو بی بی اس دنیا سے گئی ہے مدینہ جانے کے بعد, اس کا نام ہے رباب. وہ کہتی تھی میں جی کے کیا کروں. جب یہ قافلہ مدینہ کے پاس پہنچا تو ام کلثوم و زینب نے کہا مدینہ لا تقبلینا, ہمیں قبول نہ کر, ہم تیرے والی کو کھو کر آئے ہیں, تیرے سردار کو کھو کر آئے ہیں. جا کے نانا کو اپنی کہانی سنائی, ماں کے قبر پہ کہانی سنائی. جناب ام البنین جب یہ سنتی تھی, ان کو یقین نہیں آتا تھا, ہر ایک سے پوچھتی تھی میرا عباس کہاں تھا, حسین کیسے شہید ہو گئے, میرا عباس کہاں تھا, میرا عباس کہا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کو بتایا جاتا تھا نہیں. انہوں نے تو وفا کی, انہوں نے تو اپنے بازو قلم کیے, ان کے تو تین بھائی اور تھے, چاروں بھائی شہید ہوئے,
तो पकी जाती थी और अपने हाथ से चार कमरे के बना के कहती थी मुझे उम्मुल बनीन मत कहो, मैं बच्चे नहीं रहे जिनकी मैं माँ थी, और रोती थी अपने बच्चों को। थोड़ी देर बाद कुछ ख्याल आता था, उन कमरों को मिटा के कहती थी मैं हुसैन गरीब पे रहूंगी, मैं अपने बच्चों को नहीं रहूंगी, मैं उस गरीब पे रहूंगी जिसकी माँ नहीं रहूंगी। वाह हुसैना वाह गरीबा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل عبادت کو توسل کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے سمجھنے پڑھنے بولنے میں یقیناً غلطیاں ہیں تو ان کو درگزر فرما، تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی محبان محمد والے محمد ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو و روزگار کی حفاظت فرما، تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اس کورونا کی بلا کو پوری عالم انسانیت سے اٹھا لے پروردگار، ہم نے بہت سبق سیکھے پروردگار بہت عبرت حاصل کی، تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں آئندہ بھی اس قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں پروردگار ان کو بہترین نمبروں سے کامیابی نصیب فرما، جو شادی کے قابل نوجوان ہیں ان سب کی نوجوانوں کی شادیاں فرما انشاءاللہ، تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا بے روزگاروں کو روزگار دے، بے مکینوں کو مکان دے، تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے جو حرم ہیں جو روزے ہیں معصومین کے حضرت زینب کی ان کی حفاظت فرما، تو یہ واسطہ پروردگار جو ان روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما اور ان کے اصحاب انصار میں شمار فرما، ماتم حسین۔